नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हम ना बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी, आगे आग ले चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो, आग ले चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पर तूफान के झोंकों का क्या असर, ये कौन आ रहा है अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा है, मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको, बढ़ के चलो एक साथ अब नहीं झुको, साज करेगा आवाज करेगा हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। अध्यात्म अर्थात आगे, 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 कितना आगे, और आगे, कितना और, जो और है उससे और आगे, आगे 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 बढ़ते जाना है, रुकना ही नहीं है। जो कुछ यहाँ हो रहा है पॉजिटिव, वो सभी क्या है, मील के पत्थर मात्र है। ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दिख गया, वो दिख गया, ये सेवा कर ली, वो सेवा कर ली, ऐसी सेवा कर ली, वैसी सेवा कर ली, ये सब क्या है? मील के पत्थर, माइलस्टोन्स। मंजिल कहाँ है? आगे। और वहां आगे पहुंचने के बाद और आगे, कितना आगे? और आगे बढ़ते चलो। तो यज्ञ के इतिहास का कारवा कहाँ तक पहुंचा है? कश्मीर में हम डेरा डाले हुए, कश्मीर से कराची, कराची में हम डेरा डाले हुए कुछ समय से। कारवा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि यहाँ की सारी बातें पूरी नहीं हो जाती। तो ढेर सारी बातें यहाँ हो रही है 1939 से 1950 यहीं रुकना है। आज एक और नई बात जो इसी समय हुई, कल हमने देखा कैसे नए नए राज खुले, सूक्ष्म सूक्ष्म राज। यहां रहते रहते लगभग 6 वर्ष पूरे हुए। इन 6 वर्षों में बहुत सारे जो यज्ञवत्स, जो कन्याएं हैं, जो माताएं हैं, उनका अपने घर से कोई संपर्क नहीं। 6 साल पूरे हो चुके हैं। 6 साल के बाद कहीं कहीं लिखा है 5-6 साल, कहीं कहीं स्ट्रिक्टली लिखा है 6 साल। 6 साल के बाद संदेश पुत्रियों द्वारा संदेश आया कि अभी तुम्हें कहाँ जाना है? वापस घर। दो कारण, एक ह्यूमैनिटेरियन और एक आउटरीच। पहला कारण ह्यूमैनिटेरियन, जिनको छोड़कर आए थे अब वापस उनके पास जाओ, जिनके जिनसे मार खा के आए थे, अपकार जिन्होंने किया था, अब जाकर उन पर उपकार करो। दूसरा कारण आउटरीच, आउटरीच अर्थात विलेज आउटरीच प्रोग्राम होता है ना, हॉस्पिटल का है VOP, आउटरीच अर्थात, आउटरीच अर्थात वो लोग जिनको सेवाएं नहीं पहुंच रही है, सेवा मुहैया कराना, सेवा उन तक पहुंचाना, एक्सेसिबल कराना, जिन तक सेवा पहुंचती नहीं है उन तक सेवा पहुंचा देना, उसको कहते हैं आउटरीच। तो दो पर्पस थे, एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जो परम शक्ति है उसने कहा कि जाओ, ऑलमाइटी पावर ने, कि अब तुम बहुत मैच्योर हो चुके हो, बहुत शक्तिशाली हो चुके हो, अब तुमको वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? उसी लौकिक घर, उसी माँ के पास जिसने बहुत पिटाई की थी, उसी बाप के पास जिसने तालों में बंद किया था, उसी पति के पास भी, उनके पास तुम्हें वापस जाना है। ये आदेश आया संदेशियों के द्वारा एक दिन अचानक। और फिर बहुत सी कन्याएं, बहुत सी माताएं, बहुत से यज्ञवत्सों को अपने लौकिक में वापस भेजा गया। जो पूरे परिवार थे उनका तो जाने का कोई सवाल नहीं था, पर जो हमने देखा 15 कन्याएं जो भाग कर आ गई थी जनवरी में, फिर 18 जनवरी 1939 में एक कन्या की माता ने कोर्ट में केस फाइल कर दी थी और ऑलरेडी केसेस चल रही थी, तो उसके बाद की ये घटना है कि अभी 6 साल पूरे हो चुके हैं उन सबको, ये सब बातों को वो तो भूल गए, उन्होंने तो ये सोच लिया अब ये लोग वापस नहीं आएंगे, कब तक दुखी होंगे इसके लिए, इसके लिए वो अपने जीवन हमारे लिए मर चुके हैं, अभी उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो उन लोगों को घर भेजा गया, परंतु घर भेजते समय 6 नियम थे, 6 बातें। घर जब जाओगे तो स्ट्रिक्टली इन 6 बातों का ध्यान रखना, यहां पर भी अभी ये लागू है। लौकिक में जाओगे भट्टी के बाद और जो यहां रहते हैं वो जब घर जाएंगे, यदा कदा कदाचित कभी जाओगे, तो ये 6 बातें भूलना नहीं है, ये 6 बातें याद रखनी है अपनी घर लौकिक जाते समय। तो वो जो सारी कन्याएं माताएं घर गई, उन्हों को ये 6 बातों सिक्स रूल्स पहले पक्के कराए गए, उसके बाद ही घर जाना। किसको याद है 6 रूल्स? सबने सब पढ़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध घर लौटे, 12 वर्ष हो चुके। बुद्ध ने इच्छा व्यक्त की कि घर लौटना चाहिए। आनंद पूछता है क्यों, क्या आवश्यकता है? आप बुद्ध हो चुके हो, आप बुद्ध पुरुष हो, बुद्ध की कौन कौन पिता, कौन माँ, कौन पत्नी, कौन बच्चा? बुद्ध कहते नहीं, मुझे लौटना पड़ेगा, मुझे लौटना है, मैं घर जाऊंगा। घर एक बार तो जाना है, क्योंकि आधी रात को पत्नी को छोड़कर चला गया था। क्रोध से भरी होगी वो, उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी, इसलिए घर जाना है। बुद्ध वापस लौटते, सबसे मिलते, यशोधरा से नहीं मिलते, उससे थोड़ा प्राइवेट मीटिंग होनी चाहिए, पर साथ में आनंद है, परछाई की तरह। जहां बुद्ध है वहां आनंद है, वो आनंद बुद्ध का ही बड़ा भाई है, चचेरा भाई लौकिक में। और जब वो संन्यास दीक्षा लेता है बुद्ध के पास, तब वो एक शर्त रखता है कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, जहां आप सोएंगे वहीं पर मैं सोऊंगा, एक पल भी आपसे अलग नहीं रहूंगा। ये अगर शर्त मंजूर है तो ही मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, ब्राह्मणी बनने के लिए। ब्राह्मणी की भी शर्त है, ये मत कह देना कि तुम वहां जाओ सेवा में, यहां चले जाओ, ये मैं नहीं करूंगा। ये शर्त है मेरी कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा। और बुद्ध ये शर्त मान लेते, इसलिए जहां जहां बुद्ध है वहां आनंद है, जहां बुद्ध सो रहे हैं वहीं पे आनंद सो रहा है। पूरा 40 साल बुद्ध पूरे भारत में घूम रहे, सब जगह आनंद साथ साथ घूम रहा है। पर ये थोड़ी प्राइवेट बात है आज, क्योंकि यशोधरा क्रोध से भरी है अंदर से, शायद वो चीखेगी चिल्लाएगी। तो आनंद से कहते कि तुम जरा हटो तो वो प्रकट कर पाए, पर वो भी अड़ा हुआ है। जहां तुम हो वहां मैं हूं, पावरफुल ब्राह्मणी है। कहते हैं बुद्ध और यशोधरा का वार्तालाप बड़ा प्रसिद्ध वार्तालाप है। रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी कविता है इसके ऊपर एक, यशोधरा के प्रश्न। बुद्ध कुछ कुछ प्रश्नों में मौन हो गए, कोई उत्तर ही नहीं। उसमें से एक प्रश्न पहले भी सुनाया था कि यशोधरा पूछती है, क्या तुम जो पाने गए थे वो यहां नहीं मिल सकता था? क्या उत्तर दे? यस, तो गए क्यों फिर? और ना भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद तो ये पता चल गया कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो चुप रह गए। पर मुख्य प्रश्न उसका ये था, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि चुपचाप चोर की तरह निकल गए? मैं शत्राणी हूं, युद्ध के लिए भी गए होते तो तिलक दे के भेजती तुमको, क्या इतना भी विश्वास नहीं मुझ पर कि चले गए? बुद्ध चुप रह गए। पर बुद्ध कहते हैं कि जो गया था और जो लौट के आ रहा है वो अलग है। जो गया था वो तो गया, ये जो आ रहा है ये दूसरी ही ज्योति है, ये जो आ रहा है ये वो नहीं है जो गया था। भट्टी में जो आए थे और यहां से अभी जाएंगे वो नहीं होने चाहिए, वो दूसरे। दिखाया गया है बाद में यशोधरा भी संन्यास ले लेती है, वो भी भिक्षुणी बन जाती है। फिर उसका बेटा वो भी भिक्षु बन जाता है, राहुल। और आगे और आगे और आगे। तो बुद्ध कहते हैं जो गया था वो, जो लौटा है वो नहीं है, और मैंने जो पाया है अब मैं चाहता हूं कि तुम भी वह पाओ। जिस परम आनंद को मैंने पाया है, जिस परम रहस्य को, परम ज्ञान को मैं उपलब्ध हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी वो जानो, क्योंकि वो एक ऐसी उपलब्धि है कि जिसकी तुम्हें कल्पना ही नहीं है। इसलिए मैं वापस लौटा हूं, करुणा की वजह से लौटा हूं, मोह की वजह से कि नहीं, आसक्ति की वजह से नहीं। बुद्ध आनंद पूछे जा रहा है कि क्या लेना देना बुद्ध पुरुष का, कौन उसकी पत्नी, कौन उसका पाप, तुम्हारा क्या लेना देना, कौन से ऋण? सन्यासी सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। भागवत में लिखा है जब कोई जीव कृष्ण परमात्मा की शरण लेता है तो पितृ ऋण, मातृ ऋण, समाज ऋण, सभी ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, माँ बाप का क्या होगा, देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, गांव का क्या होगा, जहां मैंने जिन्होंने मेरी पालना की वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है अगर संपूर्ण समर्पण हो उसका। तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी माँ, मेरे पिता, कमाई क्या होगी, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा उनको, नथिंग। यदि समर्पण संपूर्ण है तो जिसने मेरी पालना की है वो उन्हों की भी पालना करेगा। तो 6 रूल्स, ये लोग वापस लौटते हैं तो 6 रूल्स इनको सिखाए जाते हैं। पहला, आत्मनिष्ठ, देहभान में नहीं आना है। ये मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरा टिंकू पिंटू, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, तुम्हें किस भाव में रहना है? आत्मिक, आत्मनिष्ठ भाव में। घर जाने के बाद आत्मनिष्ठ भाव हो, ये पहला रूल। दूसरा, नो हगिंग, गले मिलना नहीं किसी से जाके, बहुत दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो, मेरी याद तो नहीं आई, मुझे मिस तो नहीं किया, मधुबन में योग करते करते आपकी बहुत याद आ रही थी, आई मिस यू सो मच इन मधुबन। बाबा से भी यही योग चालू था, देखो इधर कितना अच्छा प्रोग्राम चालू है, तुमको लाइव दिखाती हूँ, वो वहां बैठा है संसार के वाइब्रेशंस में, तुम यहां बैठे हो, भावना है कि उन्हें भी थोड़ा सा अनुभव हो जाए। नो हगिंग, गले मिलना, ये करना, वो करना, ये सब में नहीं जाना है, लौकिकता भरी है इसमें। शरीर का स्पर्श चित्त को उत्तेजित करता है। दूसरा रूल, नो हगिंग। तीसरा रूल, नो ईटिंग, उनका हाथ का बनाया हुआ तुमको नहीं खाना है। और खाना क्या है? ओनली वेजिटेरियन, क्योंकि ये सभी जो सिंधी लोग हैं उस समय के सभी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है। और जितना हो सके फल दूध ये अपने हाथ से बनाओ। आगे मनोरिंद्रा दादी और हृदय पुष्पा दादी का अनुभव है जो इस किताबों में भी है, जो सबने पढ़ा होगा। तो भोजन, जैसे ही किसी के हाथ का हम भोजन खाते हैं एक मन में तरंगे उत्पन्न हो जाने लगती है। यदि वो भोजन आसक्ति से बनाया हुआ है, किस भाव से बनाया हुआ है, इसके लिए जो भी भोजन प्लेट पर आता है उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, चाहे उसको भोग भी लगाया गया है सब कुछ, फिर भी हमें अपनी दृष्टि उसको देनी है, फिर भी अपना भोग खुद लगाना है। वो किसान जिसने वो खेत में उगाया फसल, वो क्या कर रहा है, उसकी कौन सी भावना थी, वो उधर नशे में धुत विकारी जीवन, उसकी वो खेती और वहाँ पर उगाया, फिर यहाँ कितना प्रोसेस रिफाइनिंग करते 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 पैकेजिंग सब करते 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 यहाँ पहुँचे, यहाँ पे फिर माता है उसको छान रही है, फिर उसको बनाने वाले दूसरे हैं, फिर उसको परोसने वाले दूसरे हैं, फिर भोग लगाने वाले दूसरे, ये सब के थ्रू वो भोजन आ रहा है। और पैसा भी कहाँ से आया है पता नहीं, तो अशुद्धियाँ तो उसमें है, भोग भी लगाया जा रहा है, पर भोग लगाने वाले की बुद्धि कहाँ है, वो भी एक प्रश्न है। कल कहा ना, पहले फूक गधे ने मार दी, अब क्या करूँ मैं, कहीं और खो गया था। भोजन की धारणा को पक्का रखना, भोजन की धारणा में गिरावट आते ही मन स्थूल हो जाता है, भारीपन आ जाता है, वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, और जितना भारी भोजन उतने वाइब्रेशंस हमारे कम कम होते रहते हैं। हायर वाइब्रेशंस के लिए हायर फ्रिक्वेंसी वाला फूड चाहिए। सब कुछ करने के बाद में भी अगर स्थिति नहीं बन रही है तो काम करना है भोजन पर, क्योंकि शायद भोजन ही ऐसा जा रहा है। जितना स्थूल, जितना ग्रॉस, जितना भारी, जितना डेंस होगा वो, उतना मन डेंस, ग्रॉस, स्थूल, भारी रहेगा। शरीर में हमेशा एक थकावट सी रहती है, हमेशा भारीपन सा रहता है। क्यों क्यों थकान रहती है हमेशा? सब तो ठीक खा रहे, ठीक नहीं खा रहे। तो क्या बताया गया इन कन्याओं को? जब घर जाओगे तो, इसलिए दादी मनोहर इंदिरा कहती है कि मैं 7 दिन तक अपने घर रही और केवल किस पर रही? फलाहार पर, बस 7 डे फ्रूटेरियन डाइट। जैसे ही चेतना रसाहार पर जाती है, शरीर से डिटैचमेंट चालू हो जाता है। जो अनाज है, अनाज डाल डाल के जो भारीपन आता है, सुस्ती आती है, निद्रा की अवस्था रहती है, एक जड़ता रहती है शरीर में, जैसे ही अनाज हटता है और वो आ जाता है जिसमें प्राण ऊर्जा है, प्राणिक फूड है, अपने आप ऊर्जा भरने लगती है, जागती ज्योत हो जाती है चेतना। नींद थोड़ा सा सो जाओ और फ्रेश। कभी भी उठा दे, कोई उठा दे तो इरिटेशन नहीं, क्यों उठाया, और पेट भर के यहां तक खाने के बाद जब नींद आती है और कोई उठाता है तो वो दुश्मन जैसा दिखता है, नींद का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। उसको कहो कि योग का समय, वो कहता है मैं बाबा को ही देख रहा था स्वप्न में, योग उधर चल ही रहा था, तुमने मेरा योग डिस्टर्ब कर दिया। तो तीसरा, नो ईटिंग, अपना भोजन खुद अपने हाथ से बनाओ, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। याद करते हुए बनाओ, क्लास सुनते हुए बनाओ, कुछ ज्ञान का चिंतन करते करते बनाओ, किसके लिए बना रहा हूं ये सोचते सोचते बनाओ, तो वो सारे वाइब्रेशंस उसमें भर जाएंगे उसमें। चौथा रूल 6 रूल है। नो मनी, कुछ भी पैसा लेना नहीं। जिससे हम पैसा लेते हैं उसके हम गुलाम बन जाते हैं। जितना हो सके इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खुद खड़ा रहो। हाँ, इसमें फिर कुछ कैटेगरीज है। जो मधुबन में रहते, सेवा केंद्र पर रहते, वो जिन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया, वो उनके लिए ये सब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं को ही स्वाहा कर दिया है। ये देना भी कि मैं पैसे दे रहा हूं, अपने आप को अलग समझना है। मैं ही इसमें हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं, मैं ब्रह्मा कुमारीज हूं। आई एम ब्रह्मा कुमारीज, आई एम नॉट ब्रह्मा कुमार, नॉट ब्रह्मा कुमार, आई एम इंस्टीट्यूशन, मैं संस्था हूं अपने आप में, मैं ही स्वाहा हूं इसमें। वो फ्री है, नो टैक्स। तो दादी ने जो पैसे थे बस उन्हीं को यूज किया। मनोहर दादी अनुभव सुनाती, जब लौकिक में गए तो पैसों की जहां लेन देन हो जाती है, पैसों की जहां चर्चा हो जाती है, वहां वाइब्रेशंस डाउन आ जाते हैं। लोग मधुबन में आते हैं, यहां आके भी पैसों की चर्चा करते हैं। सन्यासियों के क्या रूल थे? पावर्टी रूल था, चेस्टिटी और पावर्टी, ये दो ही रूल थे सन्यासियों के, पैसा रखना नहीं है। परंतु बाद में फिर लोगों ने उसको ही माया समझ लिया। परंतु पैसा हो पर आसक्ति ना हो। पैसा आजा, ये इन हाथों से लाखों करोड़ों आएंगे, इन आंखों से चले जाएंगे, आ रहा है उसका वो हमारा है ही नहीं, जा रहा है वो भी हमारा नहीं है, वो सेवा का है, सेवा के लिए आ रहा है, सेवा के लिए जा रहा है, बस। बैंक हम नोट गिन रहे, हमें पता है ये हमारे पैसे नहीं है, बैंक के है। बहुत आ रहे तो खुश भी नहीं हो रहे, जा रहे तो दुखी भी नहीं हो रहे। नो मनी, चौथा रूल। पांचवा, जिनके पास जा रहे हो उनको ज्ञान सुनाना है। जिनके प्यास जा रहे हैं वहां कौन सी चर्चाएं हो? ज्ञान वार्ता हो, ज्ञान मंत्रणा हो, वो घरेलू चर्चाएं नहीं हो। फिर क्या हुआ उस प्लॉट का, फिर क्या हुआ उस कोर्ट केस का, फिर क्या हुआ उसकी शादी हुई कि नहीं चचेरे भाई की, मौसी की, फिर कैसा है ननद कैसी है, फिर सासू कैसी है, अरे शादी हो गई मुझे बताया भी नहीं, फोटो भी नहीं भेजे। लौकिक में जाते हैं तो इतना लौकिकता आ जाती है, इतना लौकिकता कि ये भूल ही जाते हैं कि मधुबन में भी थे या मधुबन से जा रहे। प्योर लौकिक, एब्सोल्यूट, उधर की बातें, उधर का सारी चर्चा, उधर कौन देखता है। यहाँ जब आएंगे मधुबन में आएंगे तो अब सब करेंगे, कलर कपड़े पहन के आते हैं और फिर एकदम से फरिश्ते दिखाई देने लगते शाम में, जाते समय तक फरिश्ते, फिर वहां जाके ड्रेस चेंज। छठवा, जिनके पास जा रहे हो, मूव विथ पावर एंड ब्लिस, ऑपरेट विथ पावर एंड ब्लिस, शक्ति स्वरूप रोके रहो और उनको इस सत्संग में ले आओ। कहाँ? कराची। उनको इस सत्संग में ले आओ। तो ये 6 रूल है। पहला रूल बताया, आत्मनिष्ठ स्थिति में रहना है। deny your mother and deny your father, deny your brother and deny your sister, follow me. कौन माँ, कौन बाप, मेरे पीछे आ जाओ, जीसस क्राइस्ट कहता है। क्यों कहता है ऐसा? इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता का सम्मान नहीं करो। deny अर्थात उनको एक तरफ कर दो, मैं प्रथम, वो सब बाद में। दूसरा, नो हगिंग, बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ना, गले लगना, ये सबसे लौकिकता आती है। हम अल्लाह लोक है, अलौकिक जन है, न्यारा प्यारे। तीसरा, खाना, भोजन, जितना हो सके खुद ही अपना बनाओ, खुद ही अपना खाओ। और कुमार जो विशेष बाहर रहते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। चाहे कितने भी थके हो, कुछ भी हो, अपना भोजन खुद ही बनाना है। और अगर ये करो तो बहुत ही अच्छा, सहज पुरुषार्थ, झंझट ही खत्म, SFE। उसके बाद में नो मनी, पैसा की लेन देन, पैसे की लेन देन जितना हो सके कम, ना के बराबर। हाँ, एकदम ही इमरजेंसी है तो ले लिया तो ठीक है, पर लेने के बाद भी लक्ष्य रखना है तुरंत वापस लौटा दो जिससे पैसे लिए। पर जितना हो सके कम मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं है कोई चीज़ तो चलेगा, परंतु मांगना नहीं है। क्योंकि पैसे मांगते ही एक अजीब सा हिसाब चालू हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी चालू हो जाती है। या तो हमको देना है, उसको देना है, और जिसको दिए फिर उससे भी चिंता हो जाती है कि वो देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं। हाँ, अगर देना है तो इस भाव से दो कि अब वापस नहीं आएंगे, भूल जाओ इसको, दे दिया दे दिया, बस वो सेवा में चले गए, यज्ञ में लग गए, वो या चोरी हो गई, कुछ पता ही नहीं अभी उसका, उसका कोई बुद्धि में नहीं रखो। हाँ, उसने दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो भूल जाओ। नहीं तो ये पैसों की लेन देन एक बेचैनी खत्म क्रिएट करती है, संकल्प वेस्ट होते हैं उसमें, संबंध भी बिगड़ते। पावर्टी इज बेटर, गरीबी ठीक है, चीज़ें नहीं है चलेगा, पर मांगना नहीं है। खुद कमाई करो, खुद मेहनत करो, पर मांगना नहीं है। जिसका हम खाते हैं उसके हम गुलाम बन जाते हैं। क्यों? पितामह भीष्म कुछ बोल नहीं पाए, क्या है कहते हैं, क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है, तो उसकी तरफ से हमको बोलना पड़ता है, चाहे वो अन्याय ही क्यों ना कर रहा हो। अगला, उनको ज्ञान सुनाना है, ज्ञान की चर्चा है, वो ज्ञान की वार्तालाप हो, संसार की झरमुई झगमुई, वहाँ जाते हैं हम उनके बन जाते, उनके रंग में हम रंग जाते, उनके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अनरियल है ये, क्योंकि वो संसार में रहते हैं। हम अभी अभी थोड़ी थोड़ी झलक मिली है अध्यात्म की, थोड़ा थोड़ा प्रभु प्रेम, अभी अभी आंसू आए हैं बाबा की प्यार से, और हम सोचते हैं हम एकदम संपूर्ण संपन्नता को प्राप्त हो गए और जाके सबका उद्धार कर दूंगा, मैं बुद्ध हूँ। जैसे बुद्ध गए घर और सारे सन्यासी हो गए, हम गए सन्यासी, हम थे और गृहस्थ हो गए उनके वाइब्रेशन हमसे पावरफुल है गए थे संसार उनको गड्ढे से निकालने, अभी कह रहे गड्ढे में बहुत आनंद है, पता नहीं कहाँ था मैं पहले पहले क्यों नहीं आया। और उनकी सेवा करनी है, क्या करनी है उनकी सेवा। बंगाल में बहुत बड़े क्या कहे विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, एक बार उन्होंने देखा सीढ़ियाँ उतरे तो उनका जो नौकर था बेहोश पड़ा हुआ था और आंखों में आंसू थे, सूख रहे थे, सूख गए थे, हाथों में एक खत था, तो वो खत उन्होंने लिखा, हाथ से निकाला और पढ़ने लगे तो उसमें कोई एक बुरी खबर थी जो उस नौकर के घर से आई थी, घर उसका गांव में था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहीं बैठ जाते और एक पंखा लेके उसको पंखा करने लगते। तब तक उनका मित्र वहां आता है, कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, वो नौकर है, उसकी क्या औकात, तुम बैठ के मालिक हो, तुम बैठ के उसको पंखा दे रहे हो और वो भी बेहोश है। वो बेचारा रो रो के इतना ये हो गया कि नींद आ गई उसको। विश्वचंद्र विद्यासागर कहते, एक बार मुझे याद है मेरे लौकिक पिता ऐसे ही कहीं जा रहे थे, धूप थी और गिर गए और बेहोश हो गए। उनको भी किसी एक गरीब ने इसी तरह उनकी सेवा की थी। मैं अपने पिता को इसमें देखता हूँ। तो सेवा करते समय ये भेदभाव ना हो, ये कौन है, चाहे कोई भी हो, एक आत्मा ही क्यों ना हो, पर उसकी भी सेवा, पता नहीं वो कौन सी आत्मा होगी, और हमें उसकी सेवा के लिए निमित्त बनाया गया है, तो कुछ तो राज होगा। हम भी कोई साधारण थोड़ी है और वो भी कोई साधारण नहीं। और लास्ट उनको यहां ले आना है, हमको वहां नहीं पहुंचाना है, अपने आप को उनको सेंटर तक पहुंचाना है, उनको मधुबन तक पहुंचाना है। तो ये 6 रूल उनको बताया गया, 6 रूल्स, और उसके बाद ही घर जाना। अब आते हैं मनोरिंद्रा दादी के अनुभव। तो मनोरिंद्रा दादी लिखती है कि मैं 6 साल हो गए घर वालों से कोई संपर्क नहीं, कभी कभी एक हाथ खत जो बाबा कहते थे लिखो तो लिख देते थे, बाकी उनसे कोई संपर्क नहीं था। और अचानक एक दिन फिर मैं घर गई विदाउट इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आ रही हूँ करके, इसके लिए घर जाओ तो अचानक चले जाओ, क्योंकि घर अगर इन्फॉर्म करके जाओगे तो तुम्हें जो बचपन में चीज़ें पसंद थी वो सारी तैयार रहेगी, मम्मी छोड़ेगी नहीं। तो विदाउट इन्फॉर्मिंग, और जैसे वो पहुंची तो दादी लिखती है कि दादी की जो भतीजी थी छोटी कन्या, वो तो जब दादी गई तो वो तो बहुत ही छोटी थी, तो वो चिल्लाती हुई अंदर भागी कि वो जो घर छोड़कर चली गई थी, ओम मंडली चली गई थी, वो वापस आ गई है। कौन वापस आई है? जो भी वो, उसको तो पता नहीं, वो छोटी है, तो भाग भाग के जाती है अंदर। तो उसकी माँ होती है, कौन सी माँ, वही माँ जिसने 18 जनवरी 1839 में कोर्ट केस फाइल की थी, हर गंगे, गंगा और हर, हर अर्थात दादी, इन दोनों के माँ ने क्या किया था, सबसे पहले कोर्ट केस इन्होंने की थी। जो 15 कन्याएं थी, 15 में से ये 2 थी, लक्ष्मी उनका नाम, लक्ष्मी। हाँ, एक चीज़ जो हमें नागराज भाई ने बताई, उस दिन हम सबसे पूछ रहे होते और हमें भी पता नहीं, अब वो बात पता चल गई है, बाबा की एक बेटी कलावती, उसका क्या हुआ, उसका कहीं वर्णन ही नहीं। तो नागराज भाई बता रहे थे, वो जब 1.5 वर्ष की थी तब उसे बिच्छू ने काट लिया था और शरीर उसने छोड़ दिया था, इसलिए कहीं उसका कोई वर्णन ही नहीं। तो उस दिन 2 बार हमने पूछा पर किसी को भी पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था। तो वो एक बाबा की, वो भी एक बेटी थी, और बाबा के बाकी बच्चे तो कल सुनाए थे, याद है ना, 7 बच्चे सुनाए थे कल। कौन पहला बच्चा बाबा का? खांसी, ये मेरी बच्ची है, आती रहती है। दूसरा बच्चा टेप, बहुत ओबीडियंट बच्चा है, जो मैं बोलता हूँ वैसा सुनाता है। तीसरा बच्चा ये सांप, इसको भी दूध पिलाओ। अगला बच्चा उसी दो दूध सांप के साथ ही चिड़िया भी बच्चा है। उसके बाद में चौथा माली, ये माली भी बच्चा है, CID ऑफिसर बाहर वाले, वो भी बच्चा है। और जो आने वाले बच्चे हैं अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी बच्चे हैं, और ये 5 तत्व भी बच्चे हैं, धरती माँ, धरती बच्चा, बच्ची। तो ये ब्रह्मा ने इनको अपने बच्चे बनाए। जब वो भाव आ जाता है कि हम पालक हैं, तो अपने आप सब उस अनुसार ढलने लगता है। तो वो भाग के आई, उसे तो आश्चर्य हुआ, उन्होंने तो सोचा तो ये मर चुकी है, तो कभी आएगी नहीं। परंतु दादी लिखती है कि मैं खड़ी हूँ, वो सामने खड़ी है, एकदम शिव शक्ति रूप हाथ ऐसे कर दिया। जो 7 रूल है, 6 रूल्स है, 6 रूल एक एक फॉलो किए, आत्मनिष्ठ, नो हगिंग, बेटी तुम कहाँ थी, ये सब कुछ नहीं, कौन बेटी किसकी बेटी, शक्ति रूप वो सामने, दादी पीछे, वो उसको अंदर लेके गई, उसकी माँ, बिठाया और फिर बहुत सारे लोगों को, आस पड़ोसियों को बुला लिया, और दादी ने 1 घंटा तक ज्ञान चर्चा की, प्रवचन दिया, अर्थात रूल्स, सेवा, ज्ञान सुनाना है तुमको, यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करनी है, कौन हिम्मत करेगा यहाँ वहाँ की चर्चा करते हुए, यहाँ साक्षात देवी आके खड़ी हुई है, शिव शक्ति रूप, हमारी बेटी नहीं आई है, शिव शक्ति आई है। और 1 हफ्ता दादी रही, अपना भोजन खुद, ज़्यादातर फलाहार ही किया, पैसे उनसे मांगे नहीं, जो थे वही। और लास्ट में जब जाने का समय आया तो उसकी माँ ने कहा मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, तो एक रूल यहाँ पे भी हो गया कि मुझे भी तुम्हारे साथ, तो एक एक करके छः के छः रूल फॉलो किए और वो माँ उनकी पहुँच जाती है हैदराबाद कराची, और वहाँ पर वो कहती है मुझे भी साक्षात्कार कराओ, मैंने सुना है यहाँ सबको साक्षात्कार होते हैं, मुझे भी कृष्ण को देखना है, इसको उसको देखना है। तो वो दादी कहती है ये कोई हमारे हाथ में नहीं है, ये जिसका पाठ होगा उसको साक्षात्कार होगा। दो दिन के बाद उनकी माता लक्ष्मी माता के सामने, वहाँ पे एक ध्यानेश्वरी माता होती है ध्यानी, वो उसको सामने बिठाती है और थोड़ा वार्तालाप करती है, तो उसको साक्षात्कार होता है। फिर वो देखती है क्षीर सागर, उसके उसमें एक महल, महल में एक सभा, सभा में लक्ष्मी नारायण, तो बहुत खुश हो जाती है और फिर बाबा से कहती है अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। ये वही माता है कौन सी जिसने कोर्ट केस की थी कि मेरी बच्ची को चुमने चुराया है, ये वही माता है जो कहाँ गई थी, किसके भवन के सामने जाके रोना पीट भूख हड़ताल की थी, शिवरतन मोहता उनके सामने जाके इन्होंने ही सब ये किया था, यही सब वो सब माता है ये सब। तो वो कहती है अब इधर ही रहना, मैं इधर ही रहूंगी, बाबा मुझे यहीं रख लो। पर बाबा क्या कहते हैं, नहीं, उसको वापस भेजते। हाँ, जो कन्या थी उसका कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए तुमको यहाँ रखे, ये तो बड़ी है इसका सब मानेंगे भी, तो वो तुम वहीं रहो जहाँ है। तो ये एक अनुभव है घर वापसी का। और दूसरा अनुभव ऐसा ही, और इनके मुख से जो कुछ निकलता है दादिया कहती है वो जैसे आकाशवाणी जैसे निकल रही है हमारे मुख से, खबरदार हो जाओ महाविनाश सामने है। क्योंकि कहा ये जो समय था 1943 में ही, ये कब हुआ एग्जैक्ट पता नहीं अभी ये इवेंट, क्योंकि उस समय किसी ने लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, परंतु 1940 और 50 के बीच में ये हुआ है। डेट साल कोई खबर नहीं, पर एक जगह कहा जाता है 5 और 6 साल के बाद। अब वो 5 और 6 साल 36 से लेके या 39 से लेके वो नहीं पता, तो आसपास यहाँ कहीं हुआ। और यहाँ पर माहौल बहुत गर्म है, बाहर विश्व युद्ध हो रहा है, तो वो उसी भाषा में कहती है कि मां अविनाश सामने खड़ा है जागो, तो वो सही में जाग जाते सुनाने वाला जिस भाव से कहता है उसका प्रभाव पड़ता है, जिस भाव में स्थित होके कहता है। तो जैसे आकाशवाणी हो रही है वैसे ही हृदय पुष्पा दादी वो भी इसी तरह का अनुभव सुनाती है कि हम भी लौकिक गए तो ऐसा हुआ। तो ये जो घटना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। और ये क्या था, ट्रायल रन था, ट्रायल मैराथन, ये क्या था ट्रायल मैराथन। अभी बड़ी जो मैराथन है ये होने वाली है वर्ल्ड सर्विस, वो वर्ल्ड सर्विस का ये हार्बिंगर है, उसकी ये जैसे शुरुआत हो गई है कि ये काम हमें करना पड़ेगा, कि जाना पड़ेगा जो दुखी है जो अशांत है उनको, उनके दुख दूर करने पड़ेंगे, उन्हें पवित्रता का पाठ सिखाना पड़ेगा, ये काम करना है। तो इसको कहते हैं ट्रायल मैराथन, उस बड़ी सेवा का, दिस वॉज अ ट्रायल मैराथन, हार्बिंगर ऑफ फ्यूचर सर्विस, ये ट्रेलर था। तो उनको थोड़ी सी आइडिया आ गई थी कि हमें ऐसा शायद करना पड़े, अभी लौकिक वालों के पास गए हैं। और यहाँ और एक पार्ट था जो मुरलियों में इंग्लिश वाक्य आता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात होम के कितने अर्थ है, 5-6 अर्थ है। पहला मैं खुद स्वयं का कल्याण, होम अर्थात दूसरा लौकिक माता पिता, होम अर्थात लौकिक मित्र संबंधी, होम अर्थात लौकिक गाँव, जिस गाँव से तुम निकले हो उस गाँव के ऋणी हो, लौकिक अर्थात समाज, चैरिटी होम अर्थात जिस समाज से निकले हो उस समाज के ऋणी हो। स्वतंत्र वीर सावरकर का एक वाक्य है, देहा कडन देवा कडे जाताना मथे देश लागतो आणि या देशा से आम्ही देने लागतो। शरीर से देहा कडन देवा कडे जाताना, परमात्मा की ओर जाते समय बीच में देश लगता है और इस देश के हम कर्जदार है। तो होम अर्थात देश, होम अर्थात भारत, होम अर्थात भारत क्या है, भारत की क्या परिभाषा है, भारत अर्थात स्थान, भारत अर्थात व्यक्ति, भारत माता की जय अर्थात किसकी जय, भारतवासियों की जय, एक एक भारतवासी, क्या सबका कल्याण हमने किया है, क्या सबको संदेश दिया है, किसको दिया है, बहुत कम लोगों तक पहुंचे, हम सोचते हमने बहुत सेवाएं कर ली। मुंबई जैसे शहर में जाओ, दादर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ, लोग भटक रहे भाग रहे यहाँ वहाँ, उसको पूछो तुमको पता है भगवान आया, टाइम ही नहीं है उसके पास, लोकल ट्रेन में बैठो दादर विरार पाली, पूछो कितनों को संदेश मिला है ब्रह्मा कुमारी का। और हम केवल अपनी ही खबरें सुनते हैं, इसलिए हमको लगता है बहुत हम सेवा कर रहे हैं। हम केवल अपनी अपनी खबरें सुनते रहते हैं, इसके लिए हमको लगता है हम बहुत सेवा कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, माउंट में भी कितने हैं ऐसे जिनको कोई खबर नहीं है क्या चल रहा है इनका, क्या करते हैं ये लोग। तो काम तो बहुत बड़ा है हमारा, कहाँ किया हमने, कुछ भी सेवा नहीं की अभी तक। इसलिए तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। बाप के पास बच्चों के दुख की आह आती है, बच्चों के पास क्यों नहीं आती है पता नहीं। अभी जो मुरली चली ना, पता नहीं बच्चों के पास क्यों नहीं आती, हम भी सोच रहे पता नहीं क्यों नहीं हमको सुनाई देता है। बच्चे भी क्या कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, हमको क्यों नहीं सुनाई देती है, हम अपने ही दुखों में डूबे। तो आकाशवाणी करनी है, संसार में जाओ तो लौकिक रूप ना हो, शिव शक्ति रूप में जाना है। जब भी किसी को कोर्स कराओ, जब भी कोई प्रोग्राम करो, तो वो प्रोग्राम में लौकिकता नजर ना आए। जैसे संसार के लोग प्रोग्राम करते भाग दौड़ कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, वो नहीं, शांत स्थिर अलौकिकता हो, सेंटर का वायुमंडल, प्रोग्राम का वायुमंडल, भले वो प्रोग्राम कहीं बाहर गार्डन में हो रहा है, किसी लग्न मंडप में हो रहा है, वहाँ के वाइब्रेशंस पहले ही दूषित है, वहाँ हमको हॉल मिला हुआ है। तो पहले तो दादी क्या करती थी, जब ऑक्सफोर्ड में गई पहली बार, जहाँ भाषण देना था दादी को, दादी उस हॉल में गई, उस हॉल को देखती रही कितना देर, इधर उधर घूमती रही। दादी को पूछा, दादी आप क्या कर रहे हो, दादी ने कहा यहाँ शाम को प्रोग्राम है ना, सकाश दे रही हूँ शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन तो होना चाहिए ना उस स्थान का। तो जहाँ प्रोग्राम हो, जहाँ हम जाने वाले हैं, या जो आत्मा आज शाम को कोर्स करने आने वाली है, उसको पहले ही उसकी सूक्ष्म सेवा करनी है, शक्ति देनी है उसको। और आत्माएं बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, इधर भी दुखी है उधर भी दुखी है, ज्ञान योग के अभाव के कारण इधर दुखी है। तो ये भी एक चैप्टर था। तो 1939 और 50 के बीच बहुत सारी बातें हम एक एक देख रहे हैं। पीयू की कहानी कल देखी पूरी विस्तार से, अव्यक्त नाम का वर्णन देखा, उसमें भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, अव्यक्त नाम क्यों दिए गए, क्या दिए गए, देखेंगे उसको। पोस्टर्स, फिर धारणाएं, और कुछ एक दो चैप्टर्स इससे जुड़े हुए और है। और एक जो महत्वपूर्ण था इसी पीच में, कहते हैं कि अभी तक ये सिंधियों की कम्युनिटी है, पर धीरे धीरे गुजराती लोग इस कम्युनिटी में आने लगे। तो वो जो स्टैम्प था कि ये सिंधियों की संस्था है, सिंधियों की ओम मंडली है, अभी ये नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ गुजराती लोग एंटर होने लगे हैं। अब तो ये इंटरनेशनल बन, अभी थोड़ा नेशनल रूप इसका धारण हो रहा है। ये सिंधी तो बिल्कुल सिंधी से कोई लेना देना नहीं है इसका। और दूसरा, हमने ये कहा था कि 39 में मिनिस्टर्स ने कहा था संस्था का नाम बदलो, और उसी समय पर पीयू ने क्या कहा, जो कल हमने देखा कि ये कौन है, ये अलग, ये कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा और ये सब कौन है, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा, कुमारी। इसके लिए उस तरह का वो नाम क्रिएट किया गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्योंकि ओम हाई स्कूल थी, यहाँ पढ़ाई होती है, तो सब जोड़ जाड़ के एक नया नाम, न्यूलॉजिज्म, न्यू नेम गिवन। तो आज ये चैप्टर हमने देखा, कल कुछ बातें और हम देखेंगे। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारी है देश की बड़ी, विश्व सेवा। ये सेवा करना अर्थात वास्तविक देश की सेवा करनी है, ये वास्तविक देशभक्त बनना है। देश के लिए कुर्बानी क्या है, फ्रीडम फाइटर बनना अर्थात ये है। हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी, आग ले चलो चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो। मंजिलों के मुसाफिर तुम क्या राह की, तुम्हें क्या राह की, फिर चट्टान पर तूफान के झोंकों का क्या असर, ये कौन आ रहा है अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उड़ा रहा है। मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको, पढ़ के चलो एक साथ अब नहीं झुको, साज करेगा आवाज करेगा हमारी वीरता पे सारा जहान नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। ओम शांति।
गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो,
की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिले उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको, बट चलो एक साथ अब नहीं थको। मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ अब नहीं थको। साज करेगा आवाज करेगा, साज करेगा आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो।